ఆచార్య గురువుడు విద్యాసాగర్ ముని శివం శుద్ధబుద్ధం పరం విశ్వనాథం శివం శుద్ధబుద్ధం పరం విశ్వనాథం నదేవో న బంధుర్న కర్మాన కర్తాన న బంధుర్న కర్మాన కర్తాన సంగం న స్వేక్షాన కాయం నంగం సంగం న స్వేక్షాన కాయం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం నమో వీతరాగం న బంధో న మోక్షో న రాగాది దోషో న యోగం న భోగం న వ్యాధిర్న శోక న వ్యాధిర్న శోక న కోపం న మానం న మాయాన లోభం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం. న హస్తౌ న పాదౌ న ఘ్రాణం న జీవా న చక్షుర్న కర్ణం న వక్త్రం న నిద్రా న స్వామీ న భృత్యో న దేవో న మర్త్యా చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం నమో వీతరాగం న జన్మం న మృత్యు న మోహం న తంద్రా న మృత్యు న మోహం న తంద్రా న క్షుద్రో న భీతో న కార్ష్యం న తంద్రా న స్వేదం న ఖేదం న వర్ణం న ముద్రా చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం నమో త్రిదండే త్రిఖండే హరే విశ్వనాథం విశ్వనాథం ఋషికేశ విధ్వస్త కర్మాది జాలం విధ్వస్త కర్మాది జాలం న పుణ్యం న పాపం న చాక్షాది గాత్రం చాక్షాది గాత్రం చిదానంద రూపం నమో వీతరాగం రూపం నమో వీతరాగం న బాలో న బ్రద్ధో న తుచ్చో న మూఢో న स्वेदं न भेदं न मूर्तिर्न स्नेह न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्रा चिदानन्द रूपं नमो वीतरागम् नाद्यं न मध्यं न अन्तं न चान्य न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावान् न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनम् चिदानन्द रूपं नमो वीतरागम् इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपम् न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम् चिदानन्द रूपं नमो वीतरागम् आत्मा राम गुणाकरं गुणनिधिम् चैतन्यरतनाकरम् सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा वन्दे तं हरिवंशहर्षहृदयम् श्रीमान् हृदाव्युच्यताम्
वीतराग भगवान की अपन परम ऋषि मंगल पढ़ रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की रिद्धियों को निमित्त बनाया गया है कि ये सब मुनिजन हमारे कल्याण में निमित्त बने। आज अपन का इतना सौभाग्य तो नहीं है कि ऐसे मुनिजनों के जो कि रिद्धिधारी हैं उनके अपन दर्शन कर सकें, पर अपन रोज रोज ऐसी भावना तो भाई सकते हैं कि जहाँ पर भी विदेश क्षेत्र में तो हमेशा ऋषि मुनि यति और अंगार रहते ही हैं, तो वहाँ पर रिद्धिधारी मुनि गणधर 63 रिद्धि वाले हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं, वो भी वहाँ हैं। तो इतनी भावना भा सकते हैं कि हमको भी अपने जीवन में इनके दर्शन हों और ये हमारे मंगल में निमित्त बने, हमारे कल्याण में निमित्त बने। इसी भावना से अपन इसको पढ़ रहे हैं। कल 18 प्रकार की जो बुद्धि रिद्धि के भेद, एक रिद्धि हो गई पूरी बुद्धि रिद्धि हैं, जिसमें क्या क्या प्राप्त होता है, केवल ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, फिर संभिन्न श्रोतृत्व नाम की बुद्धि रिद्धि पदानुसारी नाम की ऐसी सात हो गई। फिर पांचों इंद्री हैं, पांचों इंद्री में स्पर्श तो दूर स्पर्श, इसी तरह दूर श्रवण, दूर आस्वादन नाम की रिद्धि, दूर घ्राण और दूर चक्षु, ये पांच इंद्रियों के तो 12 इस तरह से ये हो गए। फिर प्रज्ञा श्रवण नाम की रिद्धि प्राप्त हो जाती, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्त होती अभिन्न दस पूर्वी और चतुर्दश पूर्वी, और प्रकृष्टवादी और अष्टांग निमित्त ये 6 और, तो 12 और 6 18 हो गई ये बुद्धि रिद्धि। अब कहते हैं उसके बाद चारण रिद्धि के भेद प्रभेद कितने हैं वो पढ़ते हैं अपन। वे सब मुनि महाराज कैसे होते होंगे, रिद्धि का प्रयोग नहीं करते पर उन रिद्धियों के कारण उनको इतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती, वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं समझना कि वे ऐसा करते हैं, हैं? उनके पास ये सामर्थ्य है करने की। जैसे कि कहते हैं कि इंद्र चाहे तो तीनों लोकों को, सौधर्म इंद्र चाहे तो डमरू के समान उलट पुलट कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। इसकी सामर्थ्य बताने के लिए इस तरह से, तो ये सामर्थ्य उनकी बताई। जो वास्तविक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज होंगे उन्हीं को रिद्धियां प्राप्त होती, उपयोग काय को करेंगे वो। जंघा नल श्रेणी फलांबु तंतु, जंघा नल श्रेणी फलांबु तंतु, प्रसून बीजांकुर चारणाभा, बीजांकुर चारणाभा, नवुंगण स्वैर विहारिनश्च, नवो गण स्वैर विहारिनश्च, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना, क्रियासु परमर्षयोना। ये जो है चारण रिद्धि है, इसको अपन चाहे तो दो भेद कर सकते हैं, एक चारण रिद्धि और एक आकाश गामित्व रिद्धि, इसके दो भेद कर लिए। इसको कहीं कहीं पर क्रिया रिद्धि भी मान लिया, या कि दो भेद क्रिया और विक्रिया, और फिर क्रिया में चारण रिद्धि और आकाश गामित्व, तो इसमें एक रिद्धि के बारे में दो भेद कर दिए, चारण रिद्धि और आकाश गामित्व रिद्धि, इसमें सारे आ गए। जैसे जंघाचारण, जंघाचारण वो कहलाती है रिद्धि जिसमें कि बिना जो है वो जंघाओं को हिलाए हुए आकाश में उत्क्षेपण विक्षेपण करने की, 4 अंगुल ऊपर आकाश में चलेंगे, एक तो अंतरिक्ष में जाना वो आकाशगामी रिद्धि अलग है, और ये चारण रिद्धि में जमीन से 4 अंगुल ऊपर आकाश में चलेंगे, लेकिन जंघाओं के उत्क्षेपण विक्षेपण में इतनी चतुराई होती है कि कई योजन शीघ्रता से वो और चले जाते हैं, ये सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती बिना किसी एफर्ट के। मतलब जैसा अपन को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, उनको बिना किसी प्रयत्न के और आसानी से और गमन कर सकते हैं। फिर कहलाता है श्रेणी चारण, श्रेणी चारण आकाश की जो पंक्ति है उसको बोलते हैं श्रेणी। जैसे कि एरोप्लेन की अपनी एक लाइन होती है, उनकी अपनी डायरेक्शन होती है, उसी जगह से वो मूव करते हैं। जैसे कि अपना रेल की पटरी बिछी है तो रेल को उसी के अलोंग चलना पड़ेगा, ऐसे वैसे कहीं नहीं चल सकती। ठीक इसी तरह से आकाश में जो पंक्ति है, आकाश में जो प्रदेश है आकाश के, उनकी एक पंक्ति होती है, उसको श्रेणी बोलते हैं, उसी के अलोंग वो चल सकते हैं, जबकि अपने को तो दिखाई नहीं पड़ रही कि कैसे आकाश के प्रदेश कैसे अरेंज हैं। इसमें अपन कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स देख सकते हैं, ऐसे में नहीं दिख रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स, और अगर एक ठो कोई सूर्य की ऐसी किरण आ जाए उसके बीच में अपन देखते हैं कितने डस्ट पार्टिकल्स, कितने धूल के कण हैं, वो अपन को दिख नहीं रहे, पर उनको वो सब दिखते हैं और उस आकाश पंक्ति के अनुसार वो जा सकते हैं, इतनी सूक्ष्म उनको उसके ऊपर पैर रख करके, जो कि अपन को दिखाई नहीं पड़ रहा, इस तरह की रिद्धि प्राप्त हो जाती। फिर हम इसमें एक भूल गए, अनल, अनल मतलब अग्नि, अग्नि की शिखाओं पर गमन करने की सामर्थ्य, लेकिन अग्नि का एक जीवों की विराधना नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उनका शरीर इस तरह का हो गया कि अग्नि की शिखाएं हैं उनके ऊपर वो गमन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन उससे अग्नि का एक जीवों की विराधना नहीं होगी। इसी तरह फिर फलचारण, विभिन्न प्रकार के फलों के ऊपर से चलेंगे लेकिन उसमें रहने वाले वनस्पति का एक जीवों की विराधना नहीं होगी। ये एक कैपेसिटी बता रहे हैं, नहीं तो आप ये सोचो कि क्या जरूरत पड़ी थी कि फल के ऊपर से चढ़ो, चलो तो कोई चलना थोड़ी है, पर उनके अंदर ऐसी क्षमता, ऐसा शरीर हो गया, इतना इतनी विशुद्धि के कारण शरीर इस तरह का हो गया उनका। जल चारण, जल के ऊपर वे आसानी से, जल कायक जीवों की विराधना किए बिना, नाव चलती है जल के ऊपर लेकिन जल कायक जीवों की विराधना होती है, उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि वे जल के ऊपर ऐसे चलेंगे जिससे कि जीवों की विराधना नहीं हो, इस तरह की रिद्धि। तंतु चारण, ये जो वो होते ना मकड़ी के जाल, उसको बोलते तंतु। अब वो कितना डेलिकेट है, अगर कोई जरा सा छू ले तो टूट जाएगा वो, लेकिन वो उस तंतु के ऊपर से चल सकते हैं, उनके शरीर के भार से वो तंतु टूटेगा नहीं, ऐसी रिद्धि उनको प्राप्त हो। अब ये बड़ी बड़ी मिरेकुलस लगती हैं, मतलब बड़ी चमत्कारिक चीजें हैं, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो अपन को खुद को तो समझ में नहीं आती, ना अपन इस पे कोई विश्वास कर सकते एकदम सहसा। जब शुरू शुरू में एरोप्लेन बना होगा और जब उसमें बैठ करके लोग उड़े होंगे, जब पहले पहले बताते हैं ट्रेन चली थी तो उसमें बैठ करके, तो काफी लोग तो भीड़ देखने आई थी कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। अब उस समय उनको क्या लगेगा, अजूबा लगेगा। ऐसे ही अपन को भी ये रिद्धियां सुन करके कैसा लगेगा, अजूबा लगेगा। कोई प्लेन में बैठ, कोई आकाश में उड़ सकता पक्षी की तरह से, हाँ उड़ सकता, जब तक प्लेन नहीं बने थे तब तक तो अजूबा ही था, और जिस दिन देख लिया, जिस दिन बैठ लिया, अभी भी जो नहीं बैठे होंगे उनको अजूबा लगता होगा कि क्या करते, कैसे जाते होंगे उधर, सांस कैसे लेते होंगे हैं? फिर तो इसी तरह इसको भी लेना, नहीं तो अपने को इन चीजों पर सहसा विश्वास नहीं होगा। ये सारी रिद्धियां भी इसी तरह। अब आचार्य श्री कहते हैं पहले युग था मंत्र का, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के माध्यम से ये सारी चीजें सिद्ध हो जाती थी, आज का युग है यंत्र का, आज हम वही काम यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा करते हैं, पहले अपने आत्मबल और मंत्रों की सामर्थ्य से वही काम कर लेते थे। अब ये वो काम ज्यादा कठिन है क्योंकि यंत्र का भी एक मंत्र होता है, उसका भी कोई फॉर्मूला है, इक्वेशन है उसका, उसके बेसिस पर वो अपना फंक्शन करता है, और पहले उसी इक्वेशन या कि उसी फॉर्मूला से खुद अपने भीतर और इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त करके इन सब चीजों को हासिल कर लेते थे, ऐसा समझें अपन। पुष्प फूलों के ऊपर से उनमें रहने वाले जीवों को बिना तकलीफ पहुंचाए गमन करने की सामर्थ्य, बीज विभिन्न प्रकार के बीजों के ऊपर से और गमन कर सकते, अंकुर के ऊपर से गमन करें और अंकुर को कोई क्षति ना पहुंचे, ऐसी सामर्थ्य आ गई। मतलब ये विभिन्न प्रकार की उनके जमीन से चार अंगुल ऊपर आकाश में चलने की सामर्थ्य, ये सब रिद्धि, ये चारण रिद्धि कहलाती है, इसी को अपन क्रिया रिद्धि भी कह सकते हैं। और आकाश में स्वच्छंद कहीं भी जाकर के और विचरण करें, वो भी चारण रिद्धि है, लेकिन उसका नाम क्या है, आकाश गामित्व रिद्धि। आकाश में जैसे चाहे वैसे विचरण कर सकते हैं, 5000 धनुष ऊपर जैसे भगवान का शरीर पहुंच जाता है और इतना हल्का हो जाता है वेटलेस की एक एटमॉस्फेयर की लेयर पार करके, और वहाँ वो स्टेबल हो जाते हैं, वहाँ वो आसानी से जैसे हम चलते हैं स्टेप रखते हुए वैसे चल सकते हैं। और इतने ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि चाहें तो पालथी मार करके बैठ गए हैं, पद्मासन से बैठ गए और फिर भी आसानी से मूव कर सकते हैं, हो सकता है कि स्टेप नहीं रखें और स्टेबल हो जाएं, और जैसे स्केटिंग करते हैं ना, स्केटिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऐसे स्लिप होते चले जाते हैं, कुछ पैर देखते उठा के तो रखना नहीं पड़ते, बस ऐसे खिसकते चले जाते, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती। इसमें से देखने में ये आया है कि चारण रिद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से आए और आकर के आहार ले लिया उन्होंने। और जो चारण रिद्धिधारी मुनि हैं उनको चतुर्मास करना अनिवार्य नहीं है। ये सब रिद्धिधारी मुनियों को चतुर्मास मत, क्योंकि उनके द्वारा तो चलने फिरने से हिंसा होने वाली नहीं, उनके किसी भी एक्शन से कोई हिंसा नहीं होने वाली है, इसलिए वो निरंतर गमन कर सकते हैं। अनिम्नी दक्षा कुशला महिम्नी, अनिम्नी दक्षा कुशला महिम्नी, लघिम निशक्ता कृतिनो गरिम्नी। मनु वपुर्वा वलिनश्च नित्यम् स्वस्ति क्रियासु परमर्षयुना, क्रियासु परमर्षयुना। अब विक्रिया रिद्धि है, विक्रिया के मायने हैं छोटा बड़ा, एक अनेक, कई रूपों का शरीर बना लेना, इसको कहते हैं विक्रिया रिद्धि। छोटा बड़ा बना लेना, कई कई बना लेना, एक शरीर के जैसी आकृति चाहे वैसी बना लेना, ये सब जो है विक्रिया रिद्धि कहलाती। उसमें उसमें भेद दिए हैं, अनिम्नी दक्षा इसको बोलते अनिमा रिद्धि, दूसरी है महिमा रिद्धि, फिर लघिमा रिद्धि और गरिमा रिद्धि, ये हो गई चार। इन्होंने चार ही ली हैं, हालांकि कहीं कहीं पर जो है और इनको अच्छा आगे ले लेंगे वो, ठीक, कामरूपित वशित्व इत्यादि ये आगे ले लेंगे, पर इसके साथ में इन्होंने मन वचन काय बल, ये बल रिद्धि अलग है, इसके तीन जोड़ दिए हैं और चार ले लिए हैं विक्रिया रिद्धि के। इसमें अकेली विक्रिया रिद्धि की नहीं है, विक्रिया रिद्धि चार हैं, अनिमा महिमा लघिमा और गरिमा, और बाकी फिर आ गई बल रिद्धि जिसमें मन वचन काय का विशेष बल, ये सात रिद्धियां इसमें हो गई। ये सब भगवान हमारा, ये सब मुनिजन हमारा मंगल करें। अब देखें अपन अनिमा रिद्धि क्या है, अणु के समान सूक्ष्म शरीर बना लेने की सामर्थ्य। हाँ, ये देवों को भी होती है, उनको बाय नेचर बाय बर्थ होती है वो, और यहाँ पर मुनिजनों को अगर होगी वह तो वे अपने तपस्या से उसको अचीव करेंगे। इसलिए इसमें मैंने उसमें लिखा हुआ है कि कमल की जो नाल होती है इतना सूक्ष्म शरीर बना के उसके भीतर चाहें तो वो प्रवेश कर सकते हैं, और इतना ही नहीं वे उसके भीतर जा करके और उतने से स्थान में और चाहें तो चक्रवर्ती की जितनी जितना परिवार है उसकी विभूति उस सब की भी रचना कर सकते हैं उसके भीतर। अब बताइए कैसा लगेगा एकदम, क्यों रही ये तो सब बहुत क्या कहेंगे उसको, बाउंसर ऊपर से निकल गई ये बातें, तो कोई एकदम विश्वास नहीं करेगा। लेकिन क्या करें, ऐसी ऐसी भी चीजें हैं, इतना ही नहीं है जितना हम जानते हैं या जितना विज्ञान जानता है, संसार उतना ही नहीं है, इससे भी और कहीं अधिक है, इतनी मिस्ट्री है। आज हमको किसी ने बताया था कि अभी भी विज्ञान के सामने इतनी इतने रहस्य हैं जिनके बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम है। वो बताते हैं कि वो आता ना इस पर टेलीविज़न पर कोई डिस्कवरी है, उसमें इतनी इतनी चीज़ें, बड़ा आश्चर्य होता है उन चीज़ों को देख करके। अपन ने तो देखा नहीं भैया, लेकिन अपन ने ये देखा, आचार्यों ने जो लिखा है वो तो हमने देख समझा कि हाँ ऐसा होता होगा, उसको आज आप देख रहे हैं। उस पर जल्दी विश्वास हो जाता है और उसके माध्यम से धर्म पर विश्वास हो जाए, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। हाँ, वो तो पापी को भी विश्वास हो जाएगा उन चीजों पर जो सामने दिख रही हैं, लेकिन जो सामने नहीं दिख रही और आचार्यों ने लिखी हैं, इसलिए विश्वास करना, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए पल्ले में, नहीं तो होता नहीं। हाँ, इसके लिए मैं कई बार सोचता हूं, जब भी कोई साइंस का अचीवमेंट होता है मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे फौरन ये लगता है कि अपने यहां पर ये चीज इस तरह से लिखी है, बड़ा मजा आता है। हाँ, तुम क्या आपके पास है वो तो ठीक है, पर हमारे आचार्यों ने ये लिखा हुआ है, बस इसमें अपने को ज्यादा आनंद आता, उसमें तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने भी ऐसा लिखा है, ऐसा हमें गौरव होना चाहिए। तब ये अनिमारिद्धि हो गई। महिमा, महिमा में तो समझ में आता है कि मेरु के समान इतना बड़ा, और विक्रिया जैसे कि किसने कर ली थी, है याद, विष्णु कुमार मुनि महाराज, आने वाला 22 तारीख को हैं, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने पूरा अपना शरीर सुमेरु के बराबर, एक पैर उठाया तो सीधा मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, एक स्टेप, इतना बड़ा, 2.5 दीप बराबर जो है उनकी विक्रिया, उन्होंने इतना बड़ा शरीर कर लिया। ये महिमा नाम की विक्रिया रिद्धि है इस तरह। और जब छोटा सा बनाया था तो कितना सा, बटुक ब्राह्मण, मुश्किल से 3-3.5 हाथ का इतना सा बना लिया, तो ये सब विक्रिया रिद्धि कहलाती, महिमा रिद्धि में इस तरह आ गया। उसका उदाहरण भी दिया है, विष्णु कुमार मुनि महाराज को ये रिद्धि प्राप्त हुई थी, फिर उन्होंने इसका प्रयोग किया था तो प्रायश्चित भी लिया था, ये ध्यान रखना, उनको प्रभावना धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा था प्रयोग, तब फिर बाद को उन्होंने अपना पद छोड़ करके, एक आचार्य कहते हैं, एक कहानी में आता है, बताएंगे इसको, कि एक आचार्य मानते हैं कि पद छोड़ के किया था, दूसरे कहते हैं कि नहीं, पद कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो मुनि रह करके ही विक्रिया का उपयोग करेंगे, 6ठे 7वें गुण स्थान में विक्रिया का प्रयोग होता है, जो सिद्धांत समझते हैं उनको समझना चाहिए, ये 6ठे 7वें गुण स्थान में रहने वाले महामुनियों के द्वारा ही प्रयोग में आएगी, और कोई सामान्य व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, तो एक आचार्य मानते हैं कि नहीं, उन्होंने उसी अवस्था में प्रयोग किया था और फिर बाद में प्रायश्चित किया। फिर उसके बाद कह रहे हैं लघिमा रिद्धि, लघिमा मतलब वेट लेस, हाँ, लघिमा के मायने हैं वेट लेस हो जाना, इतना शरीर हल्का हो जाता कि वायु में आसानी से, वायु के समान हल्का शरीर कर लिया, इस तरह का। और फिर उसके बाद आता है गरिमा रिद्धि, इतना भारी कि वज्र के समान हिले ही नहीं है, जैसे महाराज ने सवेरे सुनाया था कि उन्होंने अपना पैर टिका दिया, अब हिला उसको है नेमिनाथ भगवान। ये सब चीजें उनको माने सहज रूप से प्राप्त होती हैं, इन तीर्थंकर वगैरह को ये अनंत बल है उनके शरीर का, मन वचन काय का अनंत बल, उनको बल रिद्धि के बिना ही उतनी सारी चीजें प्राप्त हैं, जिसको ये रिद्धि प्राप्त होती उसको भी इसी तरह से ये सामर्थ्य प्राप्त हो जाती, वज्र के समान अपना शरीर भारी बना सकते हैं। अभी अभी लिख करके ला रहे हैं सब बच्चे लोग। अब जो है ये विक्रिया रिद्धि का इसमें चूंकि अब रुक गया, अपन फिर पढ़ेंगे, अभी 3 रिद्धियां और आ गई, मन वचन काय का बल, इनके बारे में बड़ा विशिष्ट वो है, तीनों का बल, मन की इतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती, इतना क्षयोपशम प्राप्त हो जाता कि अंतर्मुहूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग का बिना थके, अपन तो थोड़ा पढ़े तो थक जाएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा, अब मेमोरी में आ ही नहीं रहा है, नहीं, उनको मन बल इतना प्राप्त हो गया कि पूरे द्वादशांग को अंतर्मुहूर्त में चिंतन कर लेंगे विभिन्न प्रकार से, इतनी सामर्थ्य, और थकेंगे नहीं, सबसे बड़ी चीज। और वचन रिद्धि, अंतर मुहूर्त के अंदर सारे द्वादशांग का उच्चारण कर देंगे, जो अपन ने कल कहा था कि द्वादशांग का पूरा पाठ अंतर मुहूर्त के अंदर कर सकते हैं, ये वचन बल रिद्धि, लेकिन कंठ और अवरुद्ध नहीं होता और ना उनका कोई थकान उनके लिए आती है सारे द्वादशांग का पाठ करने के बाद अंतर मुहूर्त में, ये वचन बल रिद्धि कहलाती। और काय बल अर्थात 1 माह 4 माह 1-1 वर्ष अधिकतम प्रतिमा योग में बैठ गए, पानी बरसो तो, आगे बरसो तो, और ठंड आओ तो, 1 वर्ष तक तीनों योग प्रतिमा के समान बैठ गए, अन्न जल का सबका त्याग। फिर भी ध्यान रखना, 1 साल के बाद उठेंगे तो शरीर का बल पहले से और अधिक बढ़ गया। अब बताओ, होना ये चाहिए था कि घट जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस रिद्धि के प्रभाव से शरीर में कोई क्षति नहीं, बल्कि शरीर और अधिक तेजस्वी हो गया, ये काय बल रिद्धि कहलाती। इस तरह से ये रिद्धियां हैं, और इन सब रिद्धियों को धारण करने वाले महामुनि नियम से मुक्ति पाते हैं, और वे हमारे कल्याण में निमित्त बने, अपन इतनी भावना तो भाई सकते हैं। अब जो है थोड़े से ये क्वेश्चंस, इनमें से आज तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ गए हैं, मतलब बड़े बड़े कागज पर लिख करके आए हैं बड़े क्वेश्चन। पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, इसमें प्रेम और मोह में अंतर क्या है? मोह और प्रेम कहाँ हो रहा है, कहाँ मोह हो रहा है, कहाँ प्रेम हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो इन दोनों का अंतर करें, क्योंकि लिखा है कि पहले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। प्रेम वो है जो कि हमें एक दूसरे के प्रति निश्चिंत और मुक्त करता है, और मोह वो है जो एक दूसरे के प्रति हमें बाइंड अप करता है और आशक्त करता है, और जो जो आशक्ति का दुख हमें भोगना पड़ता है वो मोह है, और जो प्रेम की निश्चिंतता है जिससे कि हर्ष होता है उसका नाम प्रेम है। प्रेम करने वाला हर्षित रहेगा और मोह करने वाला हमेशा दुखी रहेगा। अब देख लो अपन अपने भीतर झांक करके कि चीजों के प्रति मोह है तो वे चीजें रहें तो भी सुख नहीं, कमती हैं ऐसा लगेगा, और नहीं है तो पीड़ा है हर स्थिति में अगर हमारी उनसे आसक्ति। ये उदाहरण ले लो, ये अच्छी चीज है, अच्छे को अच्छा कहना बहुत अच्छी, जिसकी है उसके पास ही रहे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये चीज अच्छी मुझे लग रही, इस चीज से मेरा प्रेम है। अब ये मेरी हो जावे, बस हो गया, आ गया मुंह, अब कोई छू नहीं सकता मेरे से पूछे बिना, आ गया इतने में ही, और कोई भी ले ओ, कोई भी करो, मेरा तो उस चीज से लगाव है, मेरे लिए बहुत अच्छी लगती ये चीज, कोई भी उपयोग करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेरा प्रेम है उस चीज के प्रति, ऐसे ही व्यक्ति के प्रति, ऐसे ही वस्तु के प्रति। कितनी जल्दी से हमारा मालूम पजेसिवनेस, ये मुंह ऑनरशिप, ये मेरी चीज है। जैसे नदी बह रही है कितनी सुंदर लगती है, एक कंजुली पानी मुझे पीना है बस मेरा काम हो गया, नहीं पूरी नदी मेरी है, मेरे से पूछे बिना कोई पानी नहीं पी सकता, हो गया अब रो अब मोह है ये इतना ही अंतर है भैया, और कैसे समझाएं दोनों चीजों में, अपने परिणाम स्वयं समझना चाहिए तो जल्दी हो जाएगा। ये तो सब जगह ऐसा रहता है, क्या करें, पढ़ दें क्या इसको पूरा, पढ़ देते हैं, सुनने में क्या दिक्कत, लेकिन मन खराब नहीं करना। इसीलिए लिखा है कि या तो उतने ही पढ़ो, उतने ही देखो, उतने ही सुनो, उतने ही करो, जिससे पाप का बंध ना हो। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम भुंजे जभा से ज, आचार्यों ने लिखा मुनि जनों को, कैसे चलूं, कैसे आऊं, कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, कैसे बोलूं, जिससे पाप का बंध ना हो। अब इसी में से बात निकल आई, अब सावधानी से सुनना, मन खट्टा नहीं करना, मन हो सकता कि खट्टा हो जाए, मैंने पढ़ लिया क्योंकि एक सरसरी निगाह से, हाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है। जयपुर जैन समाज के मैं कई छोटे छोटे ग्रुप बन गए हैं, उनके कई तथाकथित लीडर, एक ग्रुप का लीडर कोई सामयिक या धार्मिक कार्य करता है तो दूसरा उसकी आलोचना और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इससे समाज जुड़ने के बजाय टूटता है। कृपया इस संबंध में समाज में कुछ नियम प्रतिपादित करना, हम लोगों को इस संबंध में क्या करना चाहिए, अब बताइए आप, जिससे कि समाज जुड़े। कैसे जुड़ेगी समाज, कैसे जुड़ती है बताओ, अच्छा धागा टूट जाए तो कैसे जुड़ता, गांठ बांधना पड़ती, ये जुड़ने का तरीका सही है क्या, नहीं। और अगर कांस टूट जाए तो कैसे जुड़ता, उसके बीच में सोल्यूशन लगा दें, लेकिन वो भी दिखता है तो जुड़े कैसे, दोनों को मेल्ट कर दो और फिर से जमा दो, हो गया जुड़ जाएगा, एक मेल्ट होगा दूसरे से जुड़ तो जाएगा लेकिन लाइन दिखेगी। और होता यही है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, तो कभी भी नहीं जुड़, दोनों को अपनी कषायें मंद करना पड़ेंगी। दो ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप बने कैसे थे, कषाय की तीव्रता से। तुम चार जनों के लीडर और हमें पांचवों नहीं रखो तुम लोगों में, अच्छी बात, हम चार जने के लीडर बने। लीडर बनने की जहां भावना है, जहां कुछ करने का उद्देश्य नहीं है, जहां सिर्फ अपनी प्रभावना का ना नेम एंड फेम, मुझे लोग जाने